तक तक ले चलो करुणा करो जयराधि तक तक ले चलो करुणा करो जयराधि आदिनाथ भगवान की जय। पंच कल्याणक महोत्सव की जय। आचार्य गुरुवर श्री यशवा विद्यासागर जी महाराज जी की गुरुवर्ती यशवा क्षमा सागर जी महाराज जी की। इस पंच कल्याणक के दौरान हम अपने उन परम प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हम सभी श्रावकों को एक बात सोचना चाहिए कि इन आयोजनों में हम आखिर क्यों जाते हैं। हम इतने दूर दूर से अपने घरों से चल करके एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर दूर से चल करके इन आयोजनों में लग जाते हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके यहां पर आते हैं, तो हमारा आखिर उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले आप सभी लोगों का ईश्वर ध्यान जाना चाहिए कि आखिर आने वाला उपस्थित होकर के हम आखिर क्या चाहते हैं, और यदि निर्देश होकर के हम ऐसे धार्मिक आयोजनों में लगाते हैं तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, हमें कोई भी उससे लाभ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, अपनी मंजिल को हमें निर्धारित करना होगा, और यह सोचना होगा कि आखिर इन्होंने हमारी उपस्थिति से हमें लाभ क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि हम इन आयोजनों के निमित्त से अपनी आत्मा का परिवर्तन करना चाहते हैं। जो अनादि काल से हमारा आत्मा पतित होता हुआ चला रहा है, कर्मों के कारण वह लग चुका है, और वह जो अनंत शक्ति से संपन्न है आत्मा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अपने स्वभाव से वह चुप हो गया है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए इन धार्मिक आंदोलनों में बैठने का कि इनके माध्यम से हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकें, बुराइयों का हम विमोचन कर सकें और अच्छाइयों को अपने जीवन में उद्धारण कर सकें। तो निश्चित रूप से इन कर्मों को तो यह सब आयोजन आप लोगों को छोटे से रखते होंगे, परंतु यदि इनके माध्यम से आपने शिक्षा ली तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जीवन में आना राशि हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे निमित्तों के द्वारा आप भी एक दिन उन्हीं परम परिवर्तन आदि प्रभु की भांति आगामी चंद भावों में अपनी आत्मा को भी परमात्मा बना लेंगे, और एक दिन आप भी उस केवल नाम पूर्वक अपने आप को उसी सिद्धांत में आप भी अवस्थित कर लेंगे। तो इसलिए यदि आप बिना उद्देश्य के यहां पर आते हैं या फिर मात्र मौज मस्ती के लिए कि प्रवचन सुनने के बड़ा आनंद आता है या कार्यक्रम आदि देखने में बड़ा मनोरंजन होता है, तो यदि आप केवल एंटरटेनमेंट के लिए यहां पर आते हैं तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से तो हम लोगों ने अनंत काल से हम लोग प्रवचन आदि सुनते आ रहे हैं, और इस प्रकार से आगे उल्लेख होता है कि प्रत्येक जीव साक्षात समुद्रों में जाकर के भी और त्रिलोकी नाथ की दिव्य ध्वनि को भी सुन चुका है, तो जब उसको सुनने के बाद भी हमारा कल्याण नहीं हो सका तो क्या अब हमारा कल्याण हो सकेगा क्या। तो निश्चित रूप से जब भी हमने कुभाव में हमने दिव्य ध्वनि को सुना तो उस समय भी हमारा हृदय कुछ अच्छे नहीं रहा होगा, और हमने मात्र अपने कर्म निधि की प्राप्ति के लिए उसको हमने प्रवण किया होगा। इसलिए बार बार आप लोगों को एक ही बात अपने मन मस्तिष्क में रखना चाहिए कि जब भी हम कोई धार्मिक क्रिया करते हैं तो उससे हमारे लिए हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, हमारे आत्मा को उज्ज्वल होना चाहिए। तो निश्चित रूप से उन छोटे छोटे आयोजनों के माध्यम से
की और सहमत हो जाएगी उन कर्मों की कृपा से कि आप उन कर्मों के बारे उस असाता के बारे भी आप कभी भी अपने धर्म ज्ञान से चुत नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए निरंतर अपने उद्देश्य को आप बरकरार रखें और उसी उद्देश्य को लेकर के प्रत्येक धर्म क्रिया में सम्मिलित हो। तो आज हम लोग यह जन्म कल्याणक मनाने जा रहे हैं और यह जन्म कल्याणक भी मनाने का हमें अवसर कम मिला जब उस गर्भस्थ शिशु को उसकी वास्तव नहीं माने मानता नहीं माने बड़ी ईमानदारी के साथ उसने अपने बालक का पालन पोषण किया उसे अपने गर्भ में सुरक्षित रखा कभी भी उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें नहीं आई कि जहां डॉक्टर से थोड़ा मन परिचय बनाते तो दूर है कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि लड़की आ जाए तो बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे उसकी शादी करना पड़ेगी और हमारा लाखों रुपया उसकी शादी में जाना हो जाएगा। तो एक माँ के दिमाग में कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं आई और उसने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने गर्भ लिया 2400 घंटे उसके लिए ध्यान दिया कि हमारे किसी कन्या के द्वारा उसे कुछ तट पर घटना पहुंच जाए तब कहीं जाकर के उसने 9 महीने के बाद उस शिशु को जन्म दिया और वह भी एक ऐसा शिशु कि जिसका क्लेम जीवन में भी गोदान करें करोड़ों करोड़ जिम्मेदारों के माध्यम से हम किसी का बालकता गोदान नहीं कर सकते। हमारे लोग ऐसा सहमति नहीं है कि हम उसका गोदान कर सके। तो उसकी माँ की ईमानदारी के कारण आज हम सभी लोग उस बालक का जन्म कल्याण मनाने जा रहे हैं या हम मना कर रहे हैं। यदि उसमें भी वर्तमान समय की माओं की भांति उसमें भी कहीं मन परिचय कर लिया होगा और उसके भी विचार यदि बुरे हो जाते तो आज हम लोग यह जन्म कल्याण से हम वंचित हो जाते। तो इसलिए सबसे पहले तो हम पिता की माँ का उपकार करेंगे कि उसने बहुत बड़ा हम लोगों का सहयोग किया कि आज हम तिथि का बालक का जन्म दिन या जन्म कल्याणक मनाने जा रहे हैं और ऐसे बालक का जन्म तो महामंगलिक माना जाता है महान शुभ माना जाता है सभी का जन्म शुभ नहीं माना जाता परंतु तिथि का बालक का जन्म बड़ा मंगलकारी माना जाता है क्योंकि एक ऐसा जीव उस परम पूर्ण धरा पर अवतरित होने वाला है जिसमें कि अपने पूर्व में उसने सांसारिक सभी जीवों के सुखों के बारे में उसने सोचा था। उसे प्रथम पैदा हो गई थी कि भगवान मुझे अपने स्वरूप से कोई भी लेना देना नहीं है मैं तो दुखों को भी बड़े प्रेम से सहन कर लेता हूं परंतु संसार के जीवों को के दुखों को मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता इससे अच्छा होता कि मेरी यह आंखें नहीं होगी क्योंकि मात्र का होना तो कभी स्थापित नजर आता है जब हम संसार के जीवों को सुखी देख लेते हैं या अपनी आंखों से उनको दुखी देखते हैं तो उनको सुखी बना देते हैं तभी उन चक्षु मुझे की सार्थकता मानी जाती है। तो उस जीव में अपने पूर्व में ही इस प्रकार की तर्कों के कारण इस प्रकार की वेदना के कारण उसने मन पर नहीं सोचा कि मेरे प्रभु मैं अपने सुख और दुख को तो मैं समान मानता हूं मुझे तो तकलीफ नहीं है मैं तो दुखों को भी बड़ी क्षमता के साथ सहन कर लूंगा परंतु मेरे अंदर क्षमता कराएगी वह शक्ति कराएगी जो मैं संसार सभी जीवों को एकम जी से लेकर के पंचम जी सभी जीवों को मैं सुखी देख सकूंगा मैं संसार के सभी जीवों को दुखों को कैसे हरण कर सकूंगा। तो जब उसको यह देखना बड़ी तीव्रता के साथ होती है जब वह वेदना को चरणों पर स्तर पहुंच जाती है तो वह जी अनायास नहीं केवली और सब केवली के पास में अतिथि का प्रगति का दान कर देता है और तीनों लोगों में और जो भी हमारे जन्म रखा है कर्म प्रगतियों के बारे में हमें बताया गया जो 148 कर्म प्रगतियों में बताई गई उनमें सबसे महान कर्म प्रगति तिथि का प्रगति नहीं हुई क्योंकि इस प्रगति के अलावा आप किसी दूसरी प्रगति के माध्यम से आप संख्या असंख्य जीवों के दुखों को आप हरण नहीं कर सकते और अनेक जीवों का आप कल्याण नहीं कर सकते। यदि आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको पीछे पर प्रगति का दंड करना ही होगा। तो जन्म जी अपने पिछले भाव में और संसारी जीवों के सुख दुख के बारे में विचार करता था, सभी को सुखी देखना चाहता था, तो केवल उसका जन्मदिन मनाने पूरा। निश्चित रूप से जन्म अपने पिछले भाव में इस प्रकार की भावनाओं से भरा हुआ था, उसका अंतरण बनाकर संसारक सभी जीवों के सुखों की भावनाओं से विपरीत था, तो उसका वर्तमान को कितना महान होगा और संसारक जीवों को कितने सुख प्रदान करेगा, यह तो हमारे समझ की बात है, यह हमारे गुणा आने के हमारे गुणा की बात है। तो इसलिए उसके जन्मदिन को इतने महान उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसको कल्याण कहा जाता है। हम सब लोगों को जन्मदिन को कभी कल्याण नहीं माना जाता, हम बर्थडे को मना लेते हैं, परंतु कभी ऐसा नहीं सुना कि आपके बर्थडे के टाइम में कोई ऐसा लिखा हो कि हमारे पुत्र का 25वां जन्म करना मनाया जा रहा है। ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा और मैं हम लोगों का कभी साहस होता है, क्योंकि कल्याण तो उसका ही मनाया जाता है, जन्म तो उसका ही स्थापित माना जाता है, जो कि अंतिम जन्म होता है, जो कि जन्म से रहित हो जाती है। आप फ्यूचर का कभी जन्म नहीं हुआ और संसार में कभी जन्म नहीं होंगे, तो उनके जन्म को कल्याण के रूप में मनाया जाता है और जन्म तो जित माना जाता है जो जन्म लेने के बाद कभी मरना नहीं जाता। यदि उसका होता है तो मरना नहीं होता है, तो ऐसे जीवों का जन्म कल्याण माना जाता है और ऐसे जीवों का निर्वाण कल्याण माना जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम सभी लोगों को एक माँ के बारे में सोचना चाहिए कि उस माँ ने कभी भी बुरे विचारों को अपने अंतरंग में स्थान नहीं दिया, कभी भी उसने लिंग परिचय कराने के बारे में नहीं सोचा, जो कि आजकल की माँ है वह कौन भुक्त करना चाहती है, बड़ी तीव्रता के साथ वह वासनाओं का सेवन करना चाहती है, परंतु वह कर्म के भाव से बाधित हो जाती है। यह आत्मयोगी दोनों मूर्ति मेरी समझने को रास्ता नहीं आई कि आप संसार के प्रत्येक क्षेत्र में आप कर्म का फल चाहते हैं, आप तड़पाते हैं, आप यदि प्रभु की अर्चना भंगना आराधना भी करते हैं तो आपका मात्र एक उद्देश्य होता है कि भगवान आपकी भक्ति आपकी अभिषेक के माध्यम से हमारी सांसारिक सुखों में वृद्धि हो जाए, हमें भौतिक सामग्री प्राप्त हुआ है। तो जब आप प्रभु आपके सामने भी एक प्रकार की भावनाएं रखते हैं और संसार प्रत्येक कार्य में आप अपने प्रत्येक प्रसाद में आप आकांक्षा रखते हैं कि हमें कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमने पसीने बहा रहे हैं, हमने अपना खून लगा दिया तो हमें इसका फल तो मिलना ही चाहिए, परंतु इस काम होते क्षेत्र में आप उस फल से भावित हो जाते हैं, वहां पर आप निष्काम करने नहीं बन जाते हैं, आप बड़े चालाक किस्म के लोग माने जाएंगे कि एक तरफ तो जहां आपको निष्काम करने नहीं होना चाहिए कि कहा गया कि हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए, हमें कभी भी आकांक्षा को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए, कम से कम भक्ति के क्षेत्र में तो हमें आकांक्षा नहीं रखना चाहिए। तो यहां पर तो आप लोग आकांक्षा रखते हैं और वहां आप उस कर्म के फल से भावित हो जाते हैं, तो यदि आपको एक गाय को किसी से इतनी नफरत है तो जरा सम्मान लेने की कोशिश कर लो, चाहे देश भक्ति बन गया और अपने जीवन में बंद करी को स्थान दे दो तो अपने आप ही आपका अंतर शरीर से बन जाए, परंतु यह कचरा तो कभी नहीं चलेगी कि आप चाहे कि हम कौन भुगत करते चले जाए, हम कौन सेवन को करते चले जाए और हमें उसके फल फल जो प्राप्त हो तो उसको हम जो हम उसके प्रति हमारे कर्ता भूत उनको हम लग जाए तो कभी भी वो अच्छे नहीं बने जाएगा और कभी आपको माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे ही जीवों के बारे में हमारे मंत्र में यह बोलता है कि जो एक बार भी इस प्रकार की घटना को जीवन में घटा देते हैं और वह जो नियम पंचे अभी करा देते हैं तो वह निश्चित रूप से उनको कम से कम स्वयं आपको उस गर्भ में जाकर के उनको मान आए के कष्ट भोगने के बाद उनको मरने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है, यदि आपने उस पशु को गर्भ मना दिया तो कम से कम आपको स्वयं गर्भ मानना ही पड़ेगा। यह अपराध हमने नहीं मानता है। पहले के वजह से टीचर कभी नहीं मिल सके तो हम सबकी तो लगा का हैसियत ही क्या है। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में अस्पताल का आप विचार मत बनाएगा और कभी भी अस्पताल के दुष्प्रत्य को अपने जीवन में ख्याल मत बनेगा, क्योंकि यदि इसी प्रकार की भावना है तो हमारे आचरण होगा विद्या कारण ही महाराज की मां की उम्मीद होगी और जो भी मानव पुरुष उस धारा पर आंतरित हुए हैं तो उनकी मानव भी कुछ ऐसा प्रेम होना चाहिए उन्होंने उसका वहां पैदा दिया होगा तो इस संसार का पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई धारणा होगा या ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिसके माध्यम से आप इस प्रकार की घोषणा कर सके कि गांव में जो बालक या बालिका है वह बालिका पुरुषों में से पैर नहीं कर सकती। इस प्रकार की घोषणा करने वाले कोई आपका अगर ही जाने या मना करा रहे नहीं और आपको आपको समझ में नहीं है। वर्तमान में इस समय में ऐसा कोई भी बताने वाला आपके पास नहीं है जो इस प्रकार की घोषणा कर सके कि बालक है बालक या बालिका किस प्रकार का होगा या उसके माध्यम से आपका कितने हमारे रोशन होगा यह कोई भी बता नहीं सकता। और वैसे भी जो बालिकाओं के बारे में आप लोगों की धारणा हो रही है वह समय पर गलत मानी जाएगी, क्योंकि हमारे ये भारत देश में ऐसी ऐसी बालिकाओं ने ऐसी ऐसी महिलाओं ने जन्म लिया जिन्होंने समग्र विश्व को उन्होंने जलाकर के रख दिया और आपके भारत को उन महिलाओं के नाम से आज भी जाना जाता है। अखंड विश्व में आपके भारत को उन महिलाओं के नाम से जाना जाता है जैसे कि झांसी की रानी से आप सभी लोग परिचित हैं। एक पहली कक्षा का बच्चा भी झांसी की रानी से परिचित है और इंदिरा गांधी के बारे में जिन्होंने लगातार 15-20 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रही और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस बड़े पद का निर्वहन किया बड़ी बहानी के साथ। मैं तो यही कहूंगा कि भारत में उनकी सत्ता का या उनके मुकाबले का कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। उसने महिला होकर के भी पुरुषों से बेहतर के काम करके दिखा दिया और हमारी तो कोई दूसरी संतान नहीं थी। वह तो इतने ही संतुष्ट थे कि कोई चिंता नहीं है यदि अपनी किस्मत होगी तो यही लड़की अपना मान रोशन कर देगी। तो उन्होंने कभी भी उनकी मां ने कभी भी गौरता नहीं कराया और कभी भी उनके दिमाग में इस प्रकार की नीच बातें नहीं गई। तो परंतु वर्तमान समय में तो देखा जाता है कि इन कानून में एक भूचाल से आ रहा है बहुत अधिक इस कानून में प्रगति कर रही है। बस मात्र एक ही उद्देश्य कि कर्म का भूत करना चाहते हैं परंतु उसका भय नहीं होना चाहते। तो इसलिए यदि आप लोगों को अपने जीवन में पंच कल्याणों के माध्यम से कुछ ग्रहण करना है या कुछ अपने जीवन को सार्थक करना है तो आपको निश्चित रूप से अपने अंदर से बनाने को आपको विमोचित करना होगा और उन्हें कहीं से आपको अपने बाहर निकालना होगा और अच्छाइयों को आपको ग्रहण करना होगा। जैसे इसके बाद के प्रवचन अभी सुनने से या पंच कल्याण का भी मनाने से एक महोत्सव में एकत्रित होने से कुछ भी होने बताने वाले होंगे। मैं तो ऐसी बात हो जाएगी कि इस काम से सुन करके दूसरे काम से आ जाना यह अच्छा नहीं माना जाता और ऐसे में आपको पुण्य का दंड ही नहीं होता, क्योंकि ऐसे बेमानी मानी जाती है कि आपको मात्र अपने मनोरंजन के लिए अपने घर पर चल करके आ रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को अपने पूर्व संचित मंगल पूर्ण करने के लिए से ऐसी मानव देना मनुष्य परिणाम हुई है। अब चूंकि आपके पास अपने गुरु पुण्य के कारण आपके पास कोई माते वर्तमान समय में कोई केवल नहीं महाराज है और माते वही जानी है मन परिवार जिनसे मैं आपको छोड़ा आपके राम में उनसे पूछने देता कि वह आपको बता देते हैं कि तुमने कितने पापा बने हैं पूर्व तुमने कितने पुण्य कर्म किए हैं तब कहीं जाकर के तुम्हें आज दुर्लभ मनुष्य पाया नहीं। तो यदि आप इसकी दुर्लभता को भूल जाते हैं तो बहुत बड़ी चूक हो लेकिन आपके पढ़ने के अलावा आपके साथ कोई तो समाप्त भी नहीं होने वाला और सभी कर्मों का फल साता रखाता सभी कर्मों का फल आपको स्वयं को भोगना ही पड़ेगा और भोगने का पड़ेगा भोगने के लिए मजबूर भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए नरेंद्र मतनी नाना कराया की दौलतता को बढ़ाने सोचे और हम भी अपने जन्म को सार्थक बनाने का प्रसाद करें कि देखो यह कैसे मजबूर जीत पैदा हुए जो निरंतर अपने जन्म लेने के बाद से ही जो निरंतर संसारक सभी जीवन के सुख दुख में सहयोगी होते हैं और प्रतिचर अपने सुखों को जो बेहतर बना देते हैं उन्हें अपने दुख में भी बढ़ाने में रहता है परंतु संसार के जीवन को तो हम आपको सुखी ही देखना चाहते हैं। संसार के जीवन को दुख में बड़े दुखी हो जाते हैं उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे कोई हमारी गर्दन का तलवार कर रहा हो हमें बड़े धीरे धीरे के साथ हमें काटा जा रहा हो उन्हें ऐसी दौड़ना होने लग जाती है। तो यदि आपको ऐसी दौड़ना नहीं होती तो कम से कम दूसरे के दुख की भावना को न करें क्योंकि आजकल यह देखा जाता है कि आजकल के लोगों को अपने दुख से दुख नहीं है वह अपने दुखों को सहन भी कर लेते हैं परंतु दूसरा सुखी तो है दूसरे के सुखों को देख करके आपका आदमी दुखी होने जा रहा है यह बड़ी दुर्भावना मानी जाएगी इससे खतरनाक और कुछ नहीं माना जाएगा। ऐसे जीवन को तो साक्षात तिथि पर भी आकर के बचा नहीं सकते वह यदि चाहे भी तो आपको बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए यदि हमारे अपने धर्म को सार्थक करना है हमें चिंतन की भर्ती तो भी जन्म कल्याण बना है तो हमें इस प्रकार की भावनाओं को अपने हृदय में स्थान दिया जाएगा तभी कहीं आकर के हम अपनी कर्म माना प्रयास को सार्थकता प्रदान कर पाएंगे और निश्चित रूप से हम अपनी मात्र चंद भावनाओं के द्वारा मात्र भावनाओं के द्वारा हम अपने जीवन को सुख और शांति में बना ही लेंगे साथ ही साथ हमारे समर्थ द्वारा संपर्क में रहने वाले अनेका नेता जी जीवन का भी जीवन सुख और शांति में रहने लगेगा। सबसे बड़ा तो वही लाभ होता है क्योंकि एक जीव की चर्या का लाभ मात्र उसको नहीं मिलता उसके यात्रा का लाभ उसके संपर्क में रहने वाले अनेका लोग जीवों का उनको लाभ हो जाता है उनका आश्रय पवित्र हो जाता है। तो इसलिए कभी भी हमें इस प्रकार का नहीं मानना चाहिए कि हमारे जीवन का तो हमारा अधिकार है क्योंकि यदि आप अपने जीवन को बनाए लेते हैं आप दसवें में मृत्यु आते हैं तो आपके साथ ही साथ आपके कन्या आदि आपके पुत्र पुत्री आदि और आपके आसू पासू भी आपके आत्मा को प्रभावित होकर के और भी अपने जीवन को तहस नहस कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी इस प्रकार का मत कहना कि हमारे जीवन का तो हमारा अधिकार है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया। इस प्रकार का तो लक्ष्य मिलता है कि मानव होने के नाते आपका कर्तव्य बोलता है कि आप मनुष्य की भांति जीवन जिए और निरंतर अच्छे कार्यों को अपने जीवन में स्थान दें और साथ ही साथ अपनी चर्या के माध्यम से अपने आसपास में रहने वाले अनेकों जीवों की बढ़ाई होती है आप छुड़ा दें और उनको भी अच्छा जीवन जीने के लिए आप मजबूर कर दें। तो यह सब तो कभी नहीं सकेगा जब आप विशुद्ध आचरण करेंगे आप अच्छी क्रियाएं करेंगे और पांच पापों को अपने जीवन से त्याग नहीं देंगे तभी यह सब कुछ सार्थक हो सकेगा। परंतु दुखी बात तो यह है कि सुनने का तो आप लोगों को बहुत शौक है आप लोग यहां भी सुनते हैं और साथ ही साथ आप घर जाकर के कैसे भी सुन लेते हैं बड़े सारे बातों के प्राप्तों के यहाँ पोस्टर लिखने में रहती है कई लोगों को हजारों हजार पोस्टर अपने यहाँ एकत्र कर लिए उनका कहना है महाराज जी बड़ा आनंद आता है बहुत मजा आता है प्रवचन सुनने में परंतु मजा तो तब आना चाहिए जब आप आधे घंटे जो भी संपर्क में रहते हैं और उसमें से मात्र एक या दो सेकंड की बात को आप अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं और उसको अपने आचरण में रखा लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मजा आ जाएगा और ऐसा मजा आ जाएगा कि एक भावना को आप पूरा पूरा आनंद लेने लगे साथ ही साथ आप आगामी कार्य में भी बड़े आनंद के प्रफुल्लित होकर के अपने जीवन को जिएंगे और कभी भी आपको सफल होने का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भी धर्म मान लिया और जो भी आपने धार्मिक आयोजन में अपना अमूल्य मान लिया, वह मात्र एक ही उद्देश्य को लेकर के कि ये परम परमात्मा है तो लेकिन ना मैं तो आपके आयोजन में आकर के एक ही बात सोचता हूं कि मैं भी आपकी भांति जन्म मानकर गुणाते से रहित हो सकूं, इन सांसारिक तीनों कारणों से मैं भी अपने आप को बचा सकूं। मैं तो इसलिए आपकी भक्ति या अर्चना करता हूं या इसलिए आपके पंच कल्याणों में मैं एकत्रित हो रहा हूं। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि भगवान इन सांसारिक दुखों को रोक करके मैं तो रुक चुका हूं। अब तो हमारे मन तो खड़े हो जाते हैं जब तक हम जो मृत और मृत के दुखों के बारे में मैं विचार करता हूं या प्रेम के प्रति के बारे में मैं सोचता हूं, जब अपनी आंखों से उन प्रेम के और दुखों के बारे में सोचता हूं और जब प्रत्येक जीवन में कटने वाले हूं जानवरों की कहानी सुनता हूं, तो हमारे मन तो खड़े हो जाते हैं कि कभी भगवान ऐसा ना हो जाए कि हमारे पाप करने के कारण हमारे इन पांचों पापों को करने के कारण मैं कहीं उपकृत नहीं हो जाता थी। मैं भी अमूल्य हो रहा हूं और कहीं मुझे भी एक कठोर की भांति वाली दुर्गा जी के साथ में पाता गया है, तो अब तो भगवान मेरे कष्टों को सहन करके मैं थक चुका हूं और आप ही मात्र कैसे हैं जो हमें इन सांसारिक दुखों से बचा सकते हैं। आपके अलावा मुझे इस संसार में दूसरा कोई नहीं दिख रहा है जो मुझे इन दुखों से बचा सके, तो इसलिए कहूं मैं तो आपके पास इसलिए आता हूं और मैं इसलिए भयानक कार्य करता हूं कि मैं भी आपकी भांति जन्म मरण बुलाते से बचना चाहता हूं कि ये क्योंकि उन तीन के अलावा कोई चौथी चीज नहीं है जो मैं संसार में कहीं भ्रमण करा दे। उनके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो आपको जन्म मरण के दुखों को भूलने के लिए मजबूर कर दे, तो इसलिए मैं तो यही भावना करूंगा कि यदि आप सभी लोग भी इन सभाओं में रहे इसी उद्देश्य को लेकर के एकत्रित होते हैं कि हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हम भी इस संसार के दुखों से अपने आप को बचा सके और हमारी आत्मा की मनोति प्रमुख रूप से प्रारंभ हो जाए, क्योंकि एकदम से एक झटके में तो आपकी आत्मा अंदर बन नहीं सकती, बहुत काटा देना करेंगे, क्योंकि सभी जीवों के साथ कर्मों के पुण्य विद्यमान है, हमारी आत्मा लग रही है और यदि मैं उसके वास्तविक स्वरूप में विघटित कर रहा हूं तो हमें भी किसी तरह की भांति एक भारत चक्रवर्ती के और पूरे जीवन के बारे में भी थोड़ा पालन होना चाहिए कि उसने कितने पापा मिले थे पता नहीं तुम्हें उस केवल
कि वो श्रद्धा बात कंडीशनल नहीं है, वो श्रद्धा बात लॉजिकल नहीं है, वो सिर्फ एक अनुभूति है। रिलीजन इज नथिंग बट ए रियलाइजेशन, धर्म अनुभूति का नाम है, उसे हम शब्दों में न बांध सकते हैं न हम उसे शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। हमने पिछले दिनों ये भी सीखा है कि जिसके जीवन में इस तरह की श्रद्धा आ जाती है उसके भीतर बहुत सारी और भी क्वालिटीज अपने आप आ जाती है। और फिर हमने घर जाकर के मुझे तो मैं ऐसी आशा से बोलता हूं कि हम लोगों ने जो भी सुना है उस सबको हम लोग जरूर विचार कर रहे होंगे। मैं ये भी जानता हूं कि 100 लोगों में से कोई एक ही ठीक सुन पाता है, 99 नहीं सुन पाते हैं, पर इसके बावजूद भी हम पॉसिबिलिटीज पर ही ज्यादा ध्यान देंगे, संभावनाएं हमारे भीतर हैं। आज हमने इन दो कानों से सुना है, कल हम इस बात के लिए भी तैयार होंगे कि अपने हृदय से हम सुन सकें। सचमुच सुना तो हृदय से ही जाता है, कान तो सिर्फ माध्यम होते हैं। हमने घर जाकर के जो हमने इन कानों से सुना है उस पर विचार भी किया होगा कि अब हमें जल्दी से अपने जीवन को अच्छा बना लेना चाहिए। देर क्यों लग रही है इस पर भी हमने विचार किया होगा, और हमें अपने भीतर झांक करके देखना भी शुरू किया होगा कि हमारे भीतर जो क्वालिटीज कही गई थी वो आई हैं कि नहीं आई हैं। हम थोड़े से पहले इस संसार से बहुत भयभीत रहा करते थे, सात प्रकार के भय हमको घेरे रहा करते थे। कभी लगता था कि मेरा मरण ना हो जाए, कभी लगता था कि मुझे कोई वेदना ना घेर ले, अभी तो सब ठीक चल रहा है, इस लोक में तो मेरा काम ठीक है, लेकिन परलोक में मेरा क्या होगा, अकस्मात मेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए, इस तरह के मेरे भीतर भय पैदा हो जाते थे। अब मैं देखता हूं कि नहीं, मैं इन बातों से अब ज्यादा भयभीत नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि मैं ये जो हूं वो अलग हूं, और ये जिस पर विपत्तियां आती हैं वो बिल्कुल अलग है, वो मेरा अपना शरीर है। और मरण जब भी होता है, जन्म जब भी होता है, वो शरीर का होता है। चेतना तो विश्वास हमारे भीतर बहुत निश्चिंतता तो दे जाता है, या इसको ऐसे ना समझें, तो शास्त्रीय भाषा हो गई, ऐसे समझें कि अगर हमें प्राणी मात्र से प्रेम हो जाए और भगवत्ता से प्रेम हो जाए, हमारा पूरा मन ही स्नेह से भर गया है, वात्सल्य से भर गया है, तो फिर हम कितने निश्चिंत हो जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, हम जब कोई हमको स्कूल में बच्चे लोग डांट देते थे, हम शुरू से डरते रहे इन सब चीजों को लेकर के, आज भी हमें ऐसा लगता है। तो कोई जोर से बोल देता था या कि कोई मारपीट कर देता था, तो हम आकर के क्या करते थे, कौन था, तो सीधे जाकर के कि कोई भी नहीं है, पर माँ तो हमको सिर पर हाथ फेर करके गोद में छुपा लेगी, वहां तो मुझे सुरक्षा मिलेगी, है ना। ऐसा तो सबको लगता होगा, ये बात अलग है कि कोई ठीक ठीक कह पाता है, कोई नहीं कह पाता। तो जब मुझे लगता है कि जब एक सांसारिक स्थिति में हमको भरोसा, हमें निश्चिंतता दे जाता है, तो जरूर से हमको सच्चे देवगुरु शास्त्र की सानिध्य पाने के बाद पत्नियां दुख नहीं दे सकती। हमने सच्चा रास्ता जान लिया है और हम जल्दी से उस सच्चे रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। दर्शनम मूर्तिमरापहरणे दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिबद्धते साधु। जैसे ही मोह का अंधकार हटता है, जैसे ही हमारे भीतर श्रद्धा जागृत होती है, हमारे भीतर ज्ञान भी उसी के साथ साथ समीचीन हो जाता है, और फिर मैं राग द्वेष की निवृत्ति के लिए और धीरे धीरे अपने आचरण को भी पवित्र करने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता हूं, आचरण को ग्रहण कर लेता हूं, मेरी सज्जनता इसी में है। हमने ऐसा मन बनाया होगा, थोड़ी सी हमारी आकांक्षाएं भी कम हुई होंगी, हुई तो है। खाने पीने का भी थोड़ा मामला कम तो हो गया होगा, मैं सुबह से 6 बजे से देख रहा हूं लोग आके बैठ गए, आज की चाय का पता नहीं क्या हुआ होगा लोगों का, आए होंगे, उन्होंने कुछ किया तो होगा, मैं सोच रहा था कि इन लोगों ने क्या किया होगा ऐसे ही जल्दी जल्दी में कुछ, लेकिन कितना भी कुछ किया होगा, खाने पीने का इंतजाम भी किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन मन में एक लगन तो यही होगी कि जल्दी करो और वो काम निकलना जाए, समय ना हो जाए, पंडित जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं और पूजा वूजा हमारे पहुंचने से पहले ना पूरी हो जाए, वो भगवान का जन्म ना हो जाए, 6:45 यानी 6:45। तो बाकी चीजें की तो होंगी, लेकिन उन सब में उतना लगाव तो नहीं रहा होगा जितना कि लगाव यहां आने का रहा होगा। समथिंग इज चेंज, कुछ तो हुआ होगा, चेंज तो हुआ होगा। कितनी छोटी सी चीजें भी हमारे मन को चेंज कर देती, मैं आपको ये इशारा करना चाह रहा हूं। तो फिर एक बार हम अगर तय कर लें अपने को चेंज करना, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बस हमारे इंटरेस्ट की बात है। आज मुझे एक शब्द कहना है, रुचि। हमारे यहां पर सम्यक दर्शन या दृष्टि की निर्मलता को रुचि भी कहा है, उसे रुझान भी कहा है, जिसको पत्नी भाषा में इंक्लाइनेशन कहते हैं। इंटरेस्ट शब्द तो बहुत छोटा है, इंक्लाइनेशन बहुत अच्छा शब्द। हमारा झुकाव जिस तरफ हो गया है, हमारी जिस तरफ लगन लग गई है, बस फिर बाकी चीजें अपने आप पीछे हटती चली जाती हैं, जिस समय हमारी लगन सच्चे देवगुरु शास्त्र से लगन लग जाने का नाम ही सम्यक दर्शन है, या कि दृष्टि की निर्मलता है, या कि हमारे परिणामों का, हमारे जीवन का अच्छा हो जाना है। और फिर हमारे भीतर ये गुण भी आ गया है कि अब तो हम जो गुणवान हैं उनके बाहर के शरीर को नहीं देखते हैं, हम उनके गुणों को देखना शुरू कर देते हैं और हम उनके गुणों से प्रीति करना शुरू कर देते हैं। हमने अपने भीतर ये भी देख लिया है कि हाँ, थोड़ा सा तो अब हम भटकने वाले नहीं हैं, हमको सच्चा रास्ता मिल गया है, कोई हमें आप बातों में ला करके गलत रास्ते पर नहीं चला सकता है। ये भी मेरे ख्याल से मन ही मन अपन ने तय तो कर लिया होगा, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। और अब थोड़ा सा हमने ये भी अपने जीवन में ला लिया है कि कोई अगर सच्चे रास्ते पर चल रहा है और वो कहीं चूक जाता है तो हम उसकी उस चूक को हल्ला नहीं मचाएंगे, हम उस चूक को उसको दूर करने के लिए और प्रयत्न जरूर करेंगे। और अगर हम ही कहीं सच्चे रास्ते पर चलते चलते चूक जाएंगे तो हम उसको भी सुधार लेंगे, उसका भी प्रमार्जन कर लेंगे। और अगर हम उस सच्चे रास्ते पर गिर ही गए मान लो, तो हम जल्दी से उठ करके खड़े हो जाएंगे और फिर से अपने सच्चे रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। और अब जो भी हमें सच्चे रास्ते पर चलते मिलेगा, उस सब साधर्मी को हम बिना किसी स्वार्थ के अपना प्रेम देंगे, उसकी मदद करेंगे। और हमारे जीवन से अब इस तरह की प्रक्रिया होगी कि धर्म जीवन से प्रकट होने, सच्ची प्रभावना तो वही है कि जब जो हमने सीखा है वो हमारे लिए इतना सहज हो जाए कि हमारे जीवन के हर कृत्य में से वो चीज प्रकट होने लगे। धर्म वास्तव में क्या है, हम ये भी थोड़ा सा इसी की कोशिश करेंगे आज समझने की। जैसे कि हम लोग एक आध दिन अगर खाना नहीं मिले तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत मजा कर रहे हैं, मेरे यहां पर वॉल्यूम सिस्टम नहीं है बाबा, मेरे वॉल्यूम तो अगर होता तो मैं तो यहीं से कर लेता। ठीक, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूं तो ये जोर से बोलता है, फिर ये जोर से बोलता तो मैं धीरे बोलने लगता हूं, थोड़ा गड़बड़ है। आपका ही प्रश्न नहीं उस पर, वो भी क्या करे, वो इलेक्ट्रिक जो आ रही है वो उसी को आप कंट्रोल पर कर सकते। इसका मतलब है कि मशीन के अनुसार आदमी को चलना पड़ता है, आदमी के अनुसार मशीन नहीं चलती। और आदमी फिर भी खुश है कि आई हैंडल मशीन, मैं मशीन को हैंडल कर रहा हूं, मेरे ख्याल से मशीन आदमी को हैंडल कर रही है। खैर, तब हम बात कर रहे थे कि हमारे जीवन में इस तरह धीरे धीरे अगर हम चाहें तो धर्म प्रकट हो जाता है, और उतना ही सहज हो सकता है जितना कि सहज हमें सांस लेना है, जितना कि सहज हमें पानी पीना और जितना कि सहज हमें खाना खाना है। अच्छा देखो, अगर एक आध दिन पानी नहीं पीने मिले तो फिर भी चल जाएगा, 24 घंटे का हम फास्ट कर लेंगे, तेला वेला कर लिया तो दो तीन दिन पानी नहीं मिले तो भी काम चल जाएगा। लेकिन उसके बाद उसके बाद तो घुटने टिक जाते हैं कि नहीं, उसके बाद तो हम हार मान लेते हैं, दो चार दस दिन भोजन ना मिले तो। ठीक इसी तरह अगर हमारे जीवन में धर्म न मिले और हम घुटने टेक लें तो समझना कि अब धर्म बहुत सहज हो गया। इतना सहज हमारे लिए धर्म हो जाए, हमारे जीवन में वो चीज प्रकट होना शुरू हो जाए, तब हम मानेंगे कि हां सचमुच अब हमने अपने जीवन को धीरे धीरे परिवर्तित कर लिया। ये कसौटी है। ठीक सांस पानी और रोटी की तरह धर्म हमारी जरूरत हो जाए, ऐसा संभव है क्या? आप सोचिएगा, ऐसा संभव है। वो इसलिए संभव है कि अपन यही देख लें कि अगर अपने को गुस्सा आ गई, मान लो अपने मन का काम नहीं हुआ और गुस्सा आ गई, तो करो अच्छा कितनी देर तक कर सकते हैं, एक आध बार करके देखना चाहिए। सुबह से गुस्सा आई है और वो चल रही है, आज तो मैं गुस्से में हूं, खाना भी नहीं खाऊंगा, आज तो मैं गुस्से में किसी से बात भी नहीं करूंगा, अच्छी बात है, करो कितनी देर तक। अपने यहां पर अगर शास्त्र की भाषा में पूछें तो कषाय की तीव्रता अंतर्मुख से ज्यादा रह नहीं सकती, उसके बाद आना पड़ेगा आपको, आपको सबसाइड हो ही जाएगी वो। हम गुस्सा 24-48 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन क्षमा भाव तो हम कई कई दिन तक धारण कर सकते हैं, शांत तो हम कई दिन रह सकते हैं, ये हमारा नेचर है, इससे मालूम पड़ जाता है धर्म हमारा अपना स्वभाव है। हम अपने स्वभाव में अधिक समय तक रह सकते हैं और हम विकृतियों में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। हमें ऐसा विचार करके अपनी विकृतियों को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हटा करके धर्म चूंकि हमारा स्वभाव है उसमें आने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको वो उदाहरण दूंगा जिसमें मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन में धर्म कैसे आ सकता है। आज मेरा मन एक और था, मैं बीच में भूल रहा था, वो चीज फिर से कह देता हूं। आज तो मेरे लिए समय की कोई लिमिटेशन रखी नहीं गई, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूं। समय अगर फिक्स हो तो बहुत प्रेशर रहता है, नहीं तो मैं तो अगर अभी बोलना शुरू किया है तो कोई हो सकता है कि शाम तक बोलता रहा, घबरा गया ना कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। मुझे वो बात याद आ गई कि थोड़ी सी कसौटी और हम अपने भीतर एक और देख लें कि हम जो श्रद्धा कर रहे हैं वो श्रद्धा क्या चीज है। श्रद्धा सब अपन ने सुना है, हमने श्रद्धा के लिए और भी शब्द दिए हैं, टोटल एक्सेप्टेशन शब्द भी दिया है, विजन का क्लियर होना भी दिया है, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना भी दिया है। ये सब चीजें अगर नहीं भी समझ में आई हो तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी रुचि पर द्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, ज्यादा कठिनाई की बात नहीं है। हमारी अपनी रुचि, हमारा अपना इंक्लाइनेशन, हमारा अपना झुकाव किस तरफ है ये भी हमने समझ लिया, लेकिन वो जो झुकाव है उसके पीछे अभिप्राय क्या है ये भी हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले किसी भी चीज को हम देखते हैं तो उसके पीछे उसके प्रति या तो आकर्षण होता है या विकर्षण होता है, या तो लगाव होता है या द्वेष होता है। इससे फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हमारे भीतर जिस चीज के प्रति लगाव होता है वो लगाव निरंतर बढ़ता चला जाता है, और वो लगाव अगर हमारा सांसारिक है तो उसी को हम प्रेम कहते हैं, और वही अगर पारमार्थिक है तो उसी को हम श्रद्धा कहते हैं, और कोई बहुत कठिन बात नहीं है। जो हमारा किसी सांसारिक अभिप्राय से लगाव हो जाता है किसी व्यक्ति विशेष से या वस्तु विशेष से तो उसको हम सामान्य रूप से प्रेम कहते हैं या मोह कह देते हैं, लेकिन वही अगर हमारा परमात्मा के प्रति या अपने आत्म तत्व के प्रति या सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हो जाता उसको हम श्रद्धा कहते हैं। अब तो लगा कि ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। लगाव हम देखें कि किस तरफ हमारा ज्यादा है, वहां से डाइवर्ट करके हमें सच्चाई की तरफ अपना लगाव बढ़ाते चले, ये एक प्रक्रिया अपनी श्रद्धा को परखने की हो सकती है। इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी श्रद्धा कहां है। अगर कोई हमसे कहे कि मंदिर चल रहे हो और हम उस समय कहें कि हमें बहुत सारे काम हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारा झुकाव किस तरफ है। ये बात अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बात अलग है कि हमारी अपनी जो लाइबिलिटीज हैं वो प्रथम है। जैसे कि मां है और उसको अगर कल से बेटे की परीक्षा शुरू होनी है 1 तारीख से 10th बोर्ड की, है ना, मेरे ख्याल से मैं सही बोल रहा हूं, या कि कल से नहीं तो परसों से होगी, ऐसा कुछ सुनने में आया था। और अगर उसको अपने बेटे को 7 बजे तैयार करके भेजना है उसका खाना वाना बनाना, तो हो सकता है कि वो 6 बजे मंदिर ना आ पाए, वो 8 बजे आएगी। मैं उसको ठीक मानूंगा, मैं ये नहीं मानूंगा कि उसका इंक्लाइनेशन धर्म की तरफ नहीं है, उसका है, लेकिन उसकी फर्स्ट लाइबिलिटी, पहला कर्तव्य उसका यह है कि जिसे उसने जन्म दिया है उस बेटे को ठीक ठीक रास्ते पर भेजे, फिर उसके बाद अपना धर्म करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर जब कभी हम अपने भीतर झांक करके देखें कि हमें वक्त है धर्म करने का, इसके बाद भी हमारी धर्म में रुचि नहीं है, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी श्रद्धा कितनी है। यह एक कसौटी हो जाएगी। हम घर में बैठे हैं और अपने घर के काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, पर लगन तो वही लगी है कि जल्दी से ये पूरे हो जाते और मंदिर पहुंच जाते, कितना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा होगा, तो समझ लेना कि हमारी श्रद्धा सच्ची है। और यहां आकर के भी यही लगन लगी है कि सबने देख लो हो कि हम आ गए हैं तो चले जाते, हम तो आए यहीं से आते, सबके सामने से देख निकले, महाराज तक के सामने से निकले, उनने भी नहीं अच्छे से देख पाओ। मैं ऐसे धीरे से कह रहा हूं, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि आप ऐसा करते होंगे, ऐसा संभव है, अपने मन में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ऐसे ही अगर यहां आने के बाद भी हमारी श्रद्धा में कमजोरी तो कहलाएगी। श्रद्धा 3 तरह की हो जाती है, हम लोग नहीं समझ पाते। एक श्रद्धा होती तामसिक श्रद्धा, जिसमें हम भगवान के प्रति, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपना लगाव तो व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा स्वार्थ रहता है, कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। और बल्कि ये रहता है कि इनके पास आने से सुना है कि सारे काम बिना करे हो जाते हैं। अब जब भगवान ही करते हैं, अब आप ही बताओ, अच्छा भाई कितनी बढ़िया श्रद्धा है, हमने तो मान लिया कि भगवान आप ही सब कुछ जो करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अब कुछ नहीं करना। तो ऐसे आलसी लोगों की श्रद्धा खतरनाक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सब भगवान पे छोड़ दिया क्योंकि हमसे करते नहीं होता है, हो नहीं रहा, इसलिए अब भगवान थोड़ी हमारा खाना बना करके जाएंगे। क्यों, हम तो भगवान, क्योंकि हमने तो सुना है कि जो कुछ भी करते हैं सब भगवान ही करते हैं, हमारी तो बहुत श्रद्धा है भगवान पर। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि हम अपना स्वार्थ उनसे सिद्ध करें। ऐसी श्रद्धा तो तामसिक कहलाती है, ऐसी श्रद्धा तो हमें आलसी बना देगी, तमस यानी अंधेरे से घेर देगी। आलसी व्यक्ति को तो अंधेरे ही अंधेरा है, वो तो सोचता ही रहता है कि भगवान ही आएंगे और सब हमारा काम निपटा के चले जाएंगे। हम अपने भीतर झांक के देखें कि कभी कभी ऐसा तो नहीं होता, जब जिस काम को करते करते हम थक जाते हैं तो हम कहते हैं अब हमसे नहीं होता, अब हम तो मंदिर जा रहे हैं भगवान से निवेदन करेंगे कि हमारा काम हो जाए। कल एक व्यक्ति आए तो बोले माई आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, महाराज आशीर्वाद दे दो, हमने मन में एक चीज सोची है, वो काम हमारा हो जाए। अब हम उनसे क्या कहें कि आपकी श्रद्धा तामसिक है? नहीं, पर हमें स्वयं समझना चाहिए कि ऐसी श्रद्धा से हमको ज्यादा लाभ नहीं होगा। हमारी श्रद्धा अगर है तो हमारे आत्मविश्वास से बहुत सारे काम हो जाएंगे जो हमने कभी किए नहीं होंगे, वो भी हो जाएंगे। कोई और करने थोड़ी आएगा, वो तो हम अपने भीतर अपनी श्रद्धा से अपने आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट कर लेंगे तो सारे काम सहज हो जाएंगे। जब हमने गेहूं की खेती करी है तो हमको क्या ये कहना पड़ेगा कि हमको भूसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे वो तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जब हमने आत्मा की चर्चा शुरू कर दी है तो हमको भौतिक उपलब्धियां ना हो ऐसा तो संभव नहीं है, और भौतिक उपलब्धियां हमें चाहिए होती तो भी बात थी। हम तो धार्मिक अनुष्ठान करते समय हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम संतोषपूर्वक जीवन जिएंगे, अब हमें भौतिकताओं की आवश्यकता नहीं है। बल्कि उल्टा होता है कि जो धार्मिक है उसे भौतिकताएं मिलना शुरू होती हैं और उनको वो झोड़ता चला जाता है, यही उसकी श्रद्धा की कसौटी है। हम भी थोड़ा सा देखेंगे ऐसी कसौटी लगा के। दूसरी श्रद्धा होती राजसिक, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारी श्रद्धा बहुत है भगवान के प्रति और अब हम क्या करें, भगवान खुद ही चाहते हैं कि ज्यादा बार बार मंदिर में आवे करे, तुम दुकान चलावो करे, जब तो हुई है पैसा बढ़। अब क्या करें, भगवान ही चाह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इसलिए हम चुनाव में खड़े हैं, और कोई वजह नहीं थी। अब भगवान ही की ऐसी आज्ञा है, हमारी बहुत श्रद्धा है भगवान। आश्चर्य हो रहा होगा ना आपको कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। नहीं, ये राजसिक श्रद्धा है जिसमें हम बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। श्रद्धालु होने के साथ साथ हमारी महत्वाकांक्षाएं अगर बढ़ती चली जाती हैं कि अब तो हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के भक्त हो गए हैं, अब तो हमें संसार की सब चीजों की दौड़ में भी शामिल हो जाना है, तो ये श्रद्धा, महत्वाकांक्षी की श्रद्धा राजसिक श्रद्धा कहलाती है, और आलसी व्यक्ति की श्रद्धा तामसिक श्रद्धा कहलाती है। जो ना महत्वाकांक्षी है ना आलसी है, जो सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है और सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति सहज रूप से अपनी भक्ति प्रकट करता है, वही श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है। ये हमने आपको एक कसौटी दी, हम इस कसौटी पर अपनी श्रद्धा को परख करके देखेंगे। पिछले दिनों जिस दौर से हम गुजर रहे हैं अपनी दृष्टि को निर्मल करने के लिए, उसमें यह बहुत जरूरी है कि कभी कहीं कोई मलिनता हमारे इस दृष्टि में आ जाए तो हम फौरन सुधार लें कि नहीं, मुझे महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, मुझे आलसी भी नहीं होना चाहिए, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। जो भी कार्य होता है अगर कोई उसका श्रेय मुझे देता है तो वो श्रेय मैं अपने से बड़ों को देऊंगा। अगर मुझे कोई कहता है कि आपकी वजह से ये काम गड़बड़ हो गया है, तब मैं जरूर से एक बार फिर एनालाइज करूंगा और उस कार्य को व्यवस्थित करने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसी मेरी दृष्टि हो गई है तब फिर समझिएगा कि हाँ, सचमुच हमारी श्रद्धा बहुत परफेक्ट है, बहुत चोखी है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, सोच के दूसरा उदाहरण आया था लेकिन अब दूसरा दे देता हूं क्योंकि वो ध्यान में ही चला गया, और किताब में से देख करके बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा और मुझे लगता है कि लोग नकल कैसे करते होंगे, बहुत होशियार लोग होते होंगे नकल करने वाले, क्योंकि अब किताब में से ढूंढने में तो 5-10 मिनट लग जाएंगे और टाइम मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। एक बहुत छोटी सी बात आपसे कहूँ, श्रद्धा की बात आपसे कहूँ, मुझे इतनी देर में टाइम मिल गया सोचने के लिए, बहुत होशियार हूं मैं, ऐसा कर करा करके मैंने अपना वो उदाहरण याद कर लिया। वर्णी जी के जीवन का उदाहरण है, दो उदाहरण एक साथ मेरे सामने आ रहे हैं, दोनों सुना दो। वो तीसरा वाला जो मैंने याद किया था वो फिर भी ड्यू है। क्या हुआ है इनका, दो छोटी छोटी घटनाएं, उससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारी श्रद्धा कितनी परफेक्ट है, बस इतना ही मुझे करना और कुछ नहीं। जब चिरौंजा भाई वर्णी जी की जो धर्म मां थी वो एक बार तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे, दोनों उदाहरण बड़े प्यारे, तो सोनागिर की वंदना के लिए जा रही थी वो बस में बैठ गई और बस चलने को थी, उतने में ही जो है खबर आई कि आपके यहां पर आपके घर से निकलते ही साथ चोर घुस गए हैं और चोरी भी हो गई, आप कहां जा रही हैं तीर्थ वंदना करने के लिए। तो मालूम उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हमने तो तय कर लिया है कि हम तो तीर्थ वंदना करने जा रहे हैं, अब जो भी होना हो वो हो जाए, और तीर्थ वंदना के लिए चली गई और तीन दिन का प्रोग्राम बना के गई थी और पांच दिन के बाद लौट करके आई। वर्णी जी ने कहा कि हम भी चलते हैं देख लें क्या क्या चोरी हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं भैया तुम अपनी पढ़ाई को हर जाने करो, तुम तो जाओ विद्यालय सागर, संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, और हम जाके देखते हैं क्या क्या ले गए हैं क्या क्या बचा है। और जाकर के वहां देखा घर में तो ताले वाले तो सब टूटे पड़े हुए थे, लेकिन मजा यह था कि जो भी कीमती सामान था वो यथा स्थान रखा हुआ था, थोड़ा सा दाल चावल वगैरह जरूर बिखरा पड़ा था, जो भी आया होगा उसने खाने पीने की चीजें खा पी करके और वापस लौट गया, कीमती सामान कुछ भी लेके नहीं गया, सोने के सिक्के ऊपर पड़े हुए थे वो भी नहीं उठाए। वर्णी जी को चिट्ठी लिखी कि भैया आप लोग कछु नहीं गाओ। वर्णी जी ने क्या जवाब लिखा मुझे वो कहना है, श्रद्धा क्या चीज कहलाती है, एक श्रद्धा तो वो चिरौंजा भाई की कि यात्रा स्थगित नहीं होगी चाहे जो ले गए हों, मेरा जो होगा मेरे पास फिर भी है क्योंकि मैं भगवान के दर्शन वंदन के लिए जा रही हूं, वो मेरा अपना है, ये बाकी चीजें मुझे ज्यादा इनसे लगाव नहीं है। क्या ऐसा हमारे जीवन में कभी घटित होगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे, एक बात। वर्णी जी जो चिट्ठी में लिखते हैं वो दूसरी बात कि भाई जी आपको पैसा चोखो है वो तो चोरों को भी निपच दो, इसे को चुनी ले गया, ये दूसरी श्रद्धा है। इस तरह हम अपनी श्रद्धा को देखें गौर से कि हमारे जीवन में जो हमने कमा करके रखा है क्या वो हमने इतनी ईमानदारी से कमाया है कि जिसके गंवाने का हमें जरा भी दुख नहीं होगा, या कि जिसे हम गंवा ही नहीं सकते, या कि हमने अपने जीवन में वो सारी चीजें अर्जित कर ली हैं जिनसे ये संसार की छोटी मोटी चीजें अब हमें ज्यादा लुभाती नहीं है, हमारा रुझान हमारी रुचि मालूम पड़ जाएगी कि हमारी श्रद्धा सच्ची है नहीं। और वो दूसरा उदाहरण बहुत छोटा सा उदाहरण, वर्णी जी गए हैं वंदना करने शिखर जी की वंदना करने, और आपको मालूम है कि एक तो छोटी वंदना है एक बड़ी वंदना है, वो जो 36 किलोमीटर लगभग क्या 36 मील वो नीमिया घाट से होकर के पूरा पर्वत का चक्कर लगाते हैं, तो वो वाली कर रहे थे और उस वंदना में और दोपहर अब उपवास है आहार तो लिया नहीं है और चले जा रहे हैं, इतनी धूप हो गई कि बहुत प्यास लगी वर्णी जी को, तो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि मुझे जब बहुत प्यास लगी मेरे प्राण कंठगत हो गए, कहीं कोई पानी नहीं था, तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, मालूम जैनी तो थे नहीं वो तो असाटी थे, जैन धर्म उन्होंने स्वीकार किया गया, तो मालूम उन्होंने क्या कहा, श्रद्धा देखिएगा, कहिए पारसनाथ आपकी वंदना करने के लिए हम आए थे, और अगर वंदना करते करते हमारे प्राण भी निकल जाएंगे तो हमारे परिणाम तो अच्छे हैं, सो देवगति हो जाएगी। मनु सुनो, आप हम लोग नामधर हैं, ऐसा कहते हैं। अगर हमारे प्राण निकल गए वंदना करत करत, तो लोग का कहें कि देखो पारसनाथ की वंदना हो गए थे, अब जैसो आपको करने हो सो आप करो। आपको अपनी राख ना हो तो हमारी प्यास कम हो जाए, हमें वैसे कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं वर्णी जी के जीवन की साक्षात घटना है, कहते हैं कि 10-25 कदम चलने के बाद ही उन्हें जल का स्रोत दिखाई पड़ा, और छन्ना निकाल के उन्होंने भरी दुपहरी में और वो पानी पिया, प्यास बुझ गई। 25-50 कदम आगे बढ़े, वहां पर कुछ लोग बैठे मिल गए, उनने कहा कि वर्णी जी प्रसन्न चित्त हो आप तो, हम तो बहुत प्यास से मरे जा रहे हैं, मधुबन तक कैसे पहुंचे। अरे कहने भैया घबरात काय को, अब भाई तुम पीछे पानी पी के आए चलो। तो 25 लोगों को 50 कदम और पीछे लेकर के गए, लेकिन वहां कहां पानी था जहां थोड़ी देर पहले वर्णी जी ने पानी पिया। मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि एक श्रद्धा ये भी है कि जहां हम इतने अधिक श्रद्धालु हैं कि भगवान के सामने हम कोई आकांक्षा नहीं करते हैं, फिर भी हम अपनी भक्ति ठीक ठीक प्रकट करते हैं, और उस भक्ति के फलस्वरूप जो कुछ हमें प्राप्त होना है वो अनायास प्राप्त हो जाता है। आज हम अपनी श्रद्धा को जरूर परखेंगे कि क्या सचमुच हमारे भीतर इस तरह की श्रद्धा प्रकट हो गई है। मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि यहां सचमुच हम सबके जीवन में ऐसी श्रद्धा एक ना एक दिन जरूर आएगी। हमने शुरुआत की है तो जरूर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि।
अपने जगह पर
हो सकता है।
सुनाया